कहां से लाए थे? गोलोक धाम से। क्यों लाए थे? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु को था गेला जयदेव ठाकुर, वो जयदेव गोस्वामी कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दमदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जोग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और गोरे नटराज नर्तकों के राजा श्री चैतन्य कहाँ चले गए? एक काले अनायासी कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो अग्नि में प्रवेश करूं? गोरांगा गुणेर निधि को था गिले पाबो, तो गुणों के समुद्र गोरांग को कहाँ से प्राप्त करूं? शेष अभे संगीरा संगे जे कैलो बिलास, तो जितने संगीत है भगवान के उन्होंने संग भगवान के संग बिलास किया, शेष संग ना पाइया कांधे नरोत्तम दास, उनका संग ना पाकर के नरोत्तम दास रो रहे हैं। श्री जयदेव गोस्वामी तेरे भावतिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो आज बहुत पवित्र दिन है श्री जयदेव गोस्वामी के तिरुभाव का, और हमारे वैष्णव कैलेंडर में आप जानते हैं उनका आविर्भाव आता कि नहीं आता? जयदेव गोस्वामी का नहीं पता। हमने जब हम छापते हैं तो उसमें हाथ का निशान लगाया है, तो जहां हाथ का निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि अगर आविर्भाव है तो तिरुभाव नहीं है, या तिरुभाव है तो आविर्भाव नहीं है, जहां जहां हाथ का निशान लगाया है वैष्णव कैलेंडर में। तो जयदेव गोस्वामी के नाम पर हाथ का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर तिरुभाव है तो आविर्भाव नहीं मिलता उनका, ठीक है ना? तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, है ना? तो हमें विशेष रूप से इनका स्मरण और इनके बारे में श्रवण करना चाहिए, है? और बहुत जो है हमें कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे दिनों में इन आचार्यों की कृपा हमें साक्षात कृपा प्राप्त होती है। तो हम अब सुनेंगे इनके विषय में, तो इनका जन्म बंगाल के वीरभूमि जिले के अंदर हुआ था। बंगाल में एक जिला है वीरभूमि, और उसके अंदर एक गांव है किंदुबिल्ब। क्या नाम है? किंदुबिल्ब एक गांव है, और जिला क्या है? वीरभूमि। और प्रांत कौन सा है? बंगाल। बंगाल के अंदर वीरभूमि जिला के अंदर किंदुबिल्ब नामक ग्राम में इनके पिता का नाम था भोजदेव। क्या नाम था? भोजदेव। और माता का नाम था वामा देवी। क्या नाम था? वामा देवी। तो ये कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हैं। कान्यकुब्ज जहाँ के अजामिल थे, कन्नौज, तो ये कान्यकुब्ज से बंगाल में आए थे। तो माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़ करके चल बसे, बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, और ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार इतने बढ़िया थे कि कष्ट में रह करके भी बहुत अच्छा विद्या अभ्यास भी कर लिया, और सरल प्रेम के प्रभाव से श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए बचपन से ही। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। किसको रुपए देने थे? निरंजन नाम के ब्राह्मण को कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को जब देखा कि संसार से उदासीन है ना, बहुत विरक्त है, अकेला लड़का है, तो फिर क्या जरूरत है घर में रहने की, इसको निकालो घर से। इनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से भजन करता है तो इसका पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। तो किसी प्रकार इनके घर द्वार को हथियाने का निश्चय किया, मन में सोच लिया कि हथिया लो। तो उसने एक दस्तावेज बनाया, आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को को नहीं जानता हूँ, या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समय दे दे, नहीं तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपने घर द्वार पर कब्जा कर लेने दे, या तो रुपए दो और नहीं तो दस्तावेज हस्ताक्षर हो, घर मकान तुम्हारा हो गया मेरा, निकल जाओ घर, घर से छोड़ के निकल जाओ। तो जयदेव बिल्कुल विरक्त थे, घर द्वार में जरा भी ममता नहीं, कलम उठा करके हस्ताक्षर कर दिए। अब निरंजन कब्जा करने की तैयारी में आया था, तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो घर में आग लग गई। हरि बोल। देखो भगवान कितने अपने भक्त के पक्ष में रहते हैं, और भक्त के साथ में कितना अन्याय हो रहा है वो तो भगवान जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता, भगवान ही जानते हैं। और भगवान ने कितना अपने भक्त का जो है पक्ष लिया। तुरंत उसकी लड़की आई कि घर में तुमने यहाँ कब्जा किया, तुम्हारे घर में क्या हुआ, आग लग गई है, सब जल गया है। लड़की बोली, बाबा सब जल गया है घर में। भक्त जयदेव वहीं थे, उनके मन में द्वेष का लेश भी नहीं था। तो निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर ये उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लैपटॉप के अंदर घर में घुस गए जयदेव। और जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि अदृश्य हो गई, जैसे जागते ही सपना। आप जागते हैं तो सपना का पता नहीं चलता, आग का पता नहीं। जयदेव जो है आग बुझाने के लिए घर में गए, आग बुझ गई तुरंत। जयदेव की अलौकिक शक्ति को देख करके निरंजन के नेत्रों में जल भराया, इतनी शक्ति। तो वो नहीं जानता था कि ये तो भगवान की शक्ति है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, भक्त को तो कुछ पता ही नहीं, भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं अपने भक्त के पक्ष में। तो उसने सोचा इस इन्हीं की शक्ति है। अपने अपवित्र कर्मी करने पर पछतावा हुआ, निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ दिया उसने और बोला, देव मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने लोभ बस थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। उसने दस्तावेज को क्या किया, फाड़ दिया। आप आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता, धन्य हो तुम, आज मैंने भगवान के भक्त का प्रभाव जान लिया आज। हरि बोल, हरि बोल। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वो जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। एक घटना से ही उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान के अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। वो भी सोच नहीं सकते कि भगवान इतनी भी कृपा करते मेरे ऊपर। जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। इन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पूरी जाने का विचार किया, किंदु बल्ब से कहां पर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, बंगाल से उड़ीसा, और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर ये पूरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव को बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। उन दिनों तो पैदल यात्रा करते थे, है ना, और पानी का जो है कहीं कुंड हो, है ना, कहीं तालाब हो तो पानी पीते थे, तो कहीं पानी नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी, प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर गए। तब श्री हरि स्वयं गोपाल बालक के वेश में आकर जयदेव को वस्त्र से हवा करने लगे। भगवान अपने वस्त्र से हवा करने लगे और पानी और मधुर दूध पिलाया उन्होंने। एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके अपने को जो है छिपा लिया। अवश्य ही भगवान को छद्म वेश में समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। अब जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा कि मानो चारों ओर नीले नीले पर्वतों की श्रेणी है, नीचे कालिंदी यमुना बह रही। यमुना के तट पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने ऐसा दर्शन दिया रास्ते में ही, अभी जगन्नाथपुरी नहीं पहुंचे, रास्ते में ही। ये दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात ये गीत निकल पड़ा। ये गीत गोविंद का सबसे पहला श्लोक है। जयदेव के मुख से निकला भगवान का वो दर्शन जब किया, मेघर में दुर्म अम्बरम वन भवा श्यामास्तमाल द्रुमेर नक्तम भीरुरयम तुमेव तदिमम राधे गृहम प्रापये इत्थम नंदन ते ततश्चलितयो प्रत्यंद कुंज द्रुमम राधा माधवी उर्जयंती यमुना कूले रहा केलया। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गए। उनके साथ में एक ब्राह्मण था पराशर, मधुर ज्ञान गान सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से गीत गोविंद प्रारंभ हुआ, ग्रंथ यहीं से गीत गोविंद प्रारंभ हुआ। जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो फिर जयदेव ने जो है इस श्लोक की रचना के बाद फिर 10 अवतारों को लिखा है। तो गीत गोविंद में उनको जो है पहले दर्शन हुआ भगवान का, तो पहला श्लोक लिखा, फिर 10 अवतारों के दर्शन हुए क्रम से, और एक एक अवतार का दर्शन करते हुए उन्होंने एक एक श्लोक हर अवतार का लिखा, है ना। भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और इन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रम से स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब इन्हें बाहरी ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर ये चले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन दिनों तो जगन्नाथ जी के दर्शन और कहीं नहीं होता था, अभी तो जगन्नाथ के दर्शन हर जगह होते हैं। उस समय तो कहीं दर्शन नहीं होता, जगन्नाथपुरी के अलावा कहीं दर्शन नहीं होता था। तो जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। इनका हृदय आनंद से भर गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त की भांति रहने लगे। इनका कोई नियत स्थान नहीं था, प्रायः पेड़ के नीचे रहा करते थे और भिक्षा द्वारा भूख मिटा लेते थे। दिन रात प्रभु का ध्यान करते चिंतन गुणगान करना इनके जीवन का एकमात्र कार्य था। विवाह की इच्छा नहीं थी बिल्कुल। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती जयदेव जी को अर्पित कर दी। जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ा। तो उस ब्राह्मण को भी जो है संतान नहीं हो रही थी पहले, तो भगवान जगन्नाथ के पास आया था और बोला था कि आप जो है एक संतान मुझे दीजिए, मैं आपको वो अर्पित कर दूंगा, आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। आप जो भी मुझे संतान देंगे, मैं आपसे संतान मांग रहा हूँ, और संतान जब हो जाएगी तो मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो जगन्नाथ जी की कृपा से उनको एक कन्या हुई। तो कन्या जो है कुछ जब बड़ी हो गई तो जगन्नाथ जी के चरणों में ले आए। तो जगन्नाथ जी ने ही आदेश दिया कि जयदेव के पास ले जाओ, जयदेव के साथ विवाह करो इस कन्या का। तो फिर जब जयदेव के पास वो लाया तो जयदेव ने तो मना किया, नहीं नहीं मैं ये सब भार नहीं लेना चाहता। तो उसने कहा कि तो भगवान जगन्नाथ का आदेश है और मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अब आप जानो आपका काम जानो। तब जयदेव ने जो है मतलब कहा कि बोलो मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूँ। बोले अब मैं तो आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरी गति आप ही हैं, और तो मैं कुछ जानती नहीं, है ना। तो फिर जयदेव को रखना पड़ा। लेकिन जयदेव ने जो है पद्मावती के साथ रहकर भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, है ना। तो ये जो है मतलब विशेषता है, है ना। तो गृहस्थ बन गए और जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गाँव किंदुबिल्व लौट आए, उसी गाँव में लौट आए, और भगवान राधा माधव की युगल श्री मूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गए। तो राधा माधव जो जयदेव के जो किंदुबिल्व में थे वो अभी कहाँ पर हैं, राधा दामोदर मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर में राधा माधव भी जयदेव गोस्वामी के हैं। कुछ समय किंदुबिल्व में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले। एक राजा ने बड़ा सम्मान करके इन्हें अपने यहाँ रखा और चलते समय इच्छा न रहने पर भी बहुत सा धन इन्हें दे दिया। जयदेव जी ने उसे लेने से इनकार किया, परंतु राजा ने किसी प्रकार भी नहीं माना। तब मन मारकर इन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए धन ले लिया, लेकिन कोई आसक्ति नहीं थी धन में, कुछ सोचा भी नहीं था धन का क्या करेंगे। अभी तो हमारे पास धन की जितनी प्राप्ति होती उतनी कमी है, हमारे पास धन के जो है उपयोग के बहुत साधन है। नहीं पहले क्या था, राजा लोग स्वयं ही धर्म की स्थापना करते थे, तो फिर अपने को प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा लोग खुद ही प्रजा के ऊपर अपना जो है बल प्रयोग करते थे, धर्म का पालन कराते थे। या फिर जो कलयुग में जो राजा हैं वो शूद्र होते हैं, है ना, तो राजा की ओर से शूद्रों की ओर से कोई धर्म का प्रचार नहीं होता है, तो फिर व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रचार करने के लिए, पब्लिक में प्रचार करने के लिए हमें धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, है ना। उस समय कलयुग था लेकिन इतना प्रभाव नहीं था कलयुग का, तो राजाओं के हाथ में धर्म का जो है प्रचार होता था, है ना, तो इनको धन की आवश्यकता थी नहीं और धन के पास बहुत था। तो क्या हुआ, रास्ते में कुछ डाकुओं ने पीछे से आक्रमण करके जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते देखते इनके चारों हाथ पैर काट कर इन्हें एक कुएं में डाल दिया। अब ये तो वैसे ही दे देते, इनको तो धन की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन चोर लोग तो अपनी तरह सोचते हैं, है ना, छीन लिया और फिर ये सोच करके कि ये हमारी शिकायत करेगा, हमें कहीं फंसवाएगा, तो हाथ पैर काट के कुएं में फेंक दिया। वो कुआं पानी से भरा नहीं था, सूखा कुआं था, तो सूखे कुएं में डाल दिया। अनित्य धन की गठरी के साथ ही इन्होंने बड़ा बड़ा भयानक पाप की गठरी भी बांध ली। उन चोरों ने क्या किया, वो धन तो गठरी में बांधा ही और बहुत बड़ा पाप का गठर भी जो है बांध करके ले गए, बहुत बड़ा पाप उन्होंने कर दिया। इस प्रकार से अपनी सफलता पर बड़ा गर्व करते हुए डाकू चल दिए। ये कितने डाकू थे, चार डाकू थे। और भगवान की कृपा से कुएं में जल बिल्कुल नहीं था, इसे जयदेव जी डूबे नहीं और भगवान के दया से इन्हें कोई चोट भी नहीं आई। हाथ पैर तो कट गए लेकिन बाकी और कहीं चोट इनको नहीं आई। कुएं के अंदर एक सुंदर शिला को पाकर उसे में सुखपूर्वक बैठ गए और भगवान के विधान पर संतुष्ट होकर के नाम गुण कीर्तन करने लगे। जयदेव जी ने सोचा कि मैंने कुछ किया होगा अशुभ, उसका जो है भगवान ने दिया है, जो दंड दिया ये भी कम दिया, ऐसा सोच। थोड़ी देर बाद उधर से गौड़ देश के राजा लक्ष्मण सेन की सेना निकली, राजा जो है निकले। कुएं में आदमी की आवाज आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी कि भाई देखो आवाज कुएं के अंदर से आवाज आ रही किसी आदमी की, देखने की आज्ञा दी। एक सेवक ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा हुआ श्री कृष्ण नाम गुणगान कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले गए और इलाज कराने के लिए इन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़ में लौट आए। जयदेव जी की विद्वत्ता और कृष्ण प्रेम का परिचय पाकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उनके गुणों को देख करके राजा इनका ही भक्त बन गया। राजा ने हाथ पैर काटने वालों का नाम पता और हुलिया पूछा कि कैसे लोग थे जिन्होंने आपके हाथ पैर काटे, तो हुलिया भी इन्होंने नहीं बताया, नाम पता तो जानते नहीं थे, हुलिया भी नहीं बताया कि राज कर्मचारी उनका पता लगाकर कहीं दंड ना दें, तो नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और चिकित्सा से इनके घाव तो सूख गए। राजा ने इन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बनाया। पंचरत्न सभा मतलब सभा में पांच रत्न, उनका भी प्रधान बना दिया और सर्व अध्यक्षता का सारा भार इन्हें सौंप दिया। इसके कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी राधा माधव की मूर्ति लेकर अपने पति के पास चली आई। राजा ने बुला लिया इनकी पत्नी को भी, कहां से, किंदुबल। राधा माधव भी आ गए, इनकी पत्नी भी आ गई। राजा हर तरह से धन देकर जयदेव जी का सम्मान करना चाहते थे, परंतु धन मान के विरक्त भक्त जयदेव मामूली खर्चा के सिवा कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन राजमहल में कोई बड़ा महोत्सव हुआ, उसमें भोजन करने के लिए पूरे नगर के निवासियों को बुलाया गया। हजारों दरिद्र भिक्षुक अतिथि ब्राह्मण साधु सब आए भोजन के लिए। उन्हें में साधु वेश में चारों डाकू भी आए, ये चार डाकू जिन्होंने इनके हाथ पैर काटे थे, धन छीना था, वो आए, जिन्होंने जयदेव जी को धन के लोभ से उनके हाथ पैर काटकर कुएं में फेंक दिया था। डाकुओं को पता नहीं था कि हमने जिसे मरा समझ लिया था वही यहाँ पर सर्व अध्यक्ष है, राजा का भी गुरु है, उनको पता नहीं था। किसी के हाथ पैर काट के आप सूखे कुएं में डाल दो तो आप क्या सोचोगे, आप तो मर जाएगा, जिंदा बचेगा ही नहीं, है ना। यहाँ तो वही, और हाथ पैर कटे तो दूर से पहचान लेंगे कि भाई कौन है ना। ये तो सर्वाध्यक्ष है। डाकू ने दूर से ही जयदेव जी को देखा, लोले और लंगड़े को देखकर तुरंत पहचान लिया और डर कर भागने का मौका देखने लगे कि भागे हैं। जयदेव जी की दृष्टि पड़ी तो देखते ही आनंद में भर गए। जयदेव जी ने मन में सोचा, इन्हें धन की आवश्यकता होगी, राजा मुझसे हमेशा धन लेने को कहते रहते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिलवा दूं तो मुझे बड़ा संतोष होगा। जयदेव जी ऐसा सोच रहे हैं। जयदेव जी ने राजा से कहा, मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं, आप चाहे तो इन्हें कुछ धन दे सकते हो, आपकी बहुत इच्छा होती है धन देने की मुझे, तो आप इनको धन दे दो। तो कहने भर की देर थी, राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी इच्छा के अनुसार बहुत सा धन देकर आदर पूर्वक खिलाने पिलाने के बाद वस्त्रों से आभूषणों से सम्मानित करके और प्रेम पूर्वक विदा किया कि हमारे गुरु के आप लोग मित्र हैं, है ना। कितना सम्मान किया होगा राजा ने, इनका विदा कर दिया। और धन का बोझ इतना ज्यादा था, रास्ते में संभाल की आवश्यकता थी, सुरक्षा। तो जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि हमारे साथ जैसे इन्होंने किया, इनके साथ कोई ना करे, तो सुरक्षित पहुंचाने के लिए राजा से कहा कि सैनिक भेज दीजिए इनकी सुरक्षा के लिए। तो जयदेव जी ने एक ऑफिसर के साथ चार सेवकों को इनके साथ कर दिया कि आपकी रक्षा के लिए और भार भी उठाने के लिए, धन का भार उठाने के लिए भी चार सेवक दे दिए। चार तो ये थे और चार सेवक और एक ऑफिसर। रास्ते में ऑफिसर ने इनके धन सम्मान पाने का रहस्य जानने के लिए इनसे पूछा कि भाइयों, आपका भक्त जयदेव जी के साथ क्या संबंध है। अब सुनिए बड़े ध्यान से कि ये दुष्ट लोग जो है कितनी दुष्टता करते हैं, मतलब कोई सीमा नहीं दुष्टता की। अभी कितना इन्होंने, जयदेव जी ने इनके साथ में अच्छा व्यवहार किया और इनके अन्याय को सहन किया, है ना। अब जब पूछते हैं, आप लोगों को इतनी अपार संपत्ति दिलवा करके आपका उपकार का बदला चुकाया है, तो आपने क्या उपकार किया इनके साथ, आपने इनके साथ में कोई उपकार किया होगा कि इतनी संपत्ति, असीमित संपत्ति आपको दिलवाई है, तो आपके उपकार का बदला उन्होंने चुकाया है राजा के गुरु महाराज ने, तो आपने इनका क्या उपकार किया था, पूछ रहे हैं। तो ये पापी डाकू ने ईश्वर के न्याय को भुला करके कपटपूर्वक कहा कि साहब, तुम्हारा अध्यक्ष है, हम लोग एक राज्य के कर्मचारी थे, हम लोग ऑफिसर थे, ये हमारे नियंत्रण में कार्य करता था, इसने एक ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने इसका सिर उड़ा देने की आज्ञा दी कि हम इसका सिर उड़ा दें। देखो पूरी कहानी कितनी गलत बना दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया, इसके हाथ पैर कटवा करके छोड़ दिया, तो हम कहीं भेद ना खोल दें, इसी डर से इसने हमारा इतना सम्मान किया कराया। इतना पाप है, पृथ्वी सहन नहीं कर सकती इतना पाप। तो हमने भी इसका बुरा हो जाने के डर से कुछ भी नहीं कहा। डाकुओं का इतना कहना था, धड़ाम से धरती फटी और चारों जीते जी उसमें समा गए। धरती है ना, तो धरती भी कहती है कि झूठे आदमी का बोझ मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, बड़े बड़े पर्वत और समुद्रों का बोझ तो मैं सहन करती हूँ। और झूठ किसके संबंध में, एक भक्त के संबंध में झूठ बोले, है ना। तो धरती बोझ नहीं संभाल पाई, फट गई, है ना। और धन संपत्ति तो दूसरों के हाथ में थी तो सुरक्षित रही, है ना। तो चारों के चारों जो है जमीन में समा गए। और राज कर्मचारी आश्चर्य में डूब गए कि ये क्या हो गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इन्होंने ऐसी बात बोली और धरती में समा गए, क्या चक्कर क्या है, है ना। तब ऑफिसर नौकरों के सिर पर सारा धन लदवाकर वापस राजधानी लौट आए और राजा से सारा हाल सुनाया कि समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने ऐसी बात बोली और वो समा गए, अब धन तो हम जो है वापस ले आए हैं, धन तो आप रखो। राजा ने जयदेव को बुलाकर चकित मन से सब बातें सुनाई कि सच क्या है ये बताइए। इतने में राजा ये देखकर आश्चर्य हर्ष में डूब गए कि जयदेव जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, उनके कटे हुए हाथ पर उसी क्षण वापस आ गए। हरि बोल। भगवान ने जो है जयदेव के ऊपर जो कलंक लगा था उसको मिटाने के लिए कर दिया, ऐसा हाथ पैर वापस आ गए। राजा ने विस्मित होकर आग्रह पूर्वक सारा हाल पूछा कि क्या रहस्य है, एक के बाद दूसरा रहस्य ये होते जा रहे हैं, क्या रहस्य है। जयदेव जी को अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी। उन्होंने कहा, राजन, जिसके कारण इन लोगों ने इनके पार प्राण गए, मैंने धन को बुरा समझकर छोड़ दिया था, पुनः राजा के आग्रह से ग्रहण किया, इसी से वन में इन बेचारों की बुद्धि लोभ से दूषित हो गई। इन्होंने धन छीनने के लिए मुझे लूला लंगड़ा करके कुएं में डाल दिया। इस प्रकार इन्होंने धन का दोष सिद्ध करके मेरे साथ मित्रता का ही बर्ताव किया। मैं इनके उपकार से दब गया, इसी से इन्हें आपके पास से धन दिलवाया। अधिक धन दिलवाने में मेरा एक हेतु यह था कि ये आगे से ऐसा काम ना करें, किसी और के साथ ना करें। तो मेरा ये विचार था कि इनको धन दिलवाया मैंने, अवश्य ही मेरे हाथ पर किसे पहले के कर्म से कटे थे। आज अपने ही कारण से इनकी इस प्रकार मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि इनका दोष था तो भगवान इन्हें क्षमा करें। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष ना देखकर भगवान ने दया करके मेरे हाथ पर पुनः पहले जैसे बना दिए। ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो नहीं भजता उसकी समान भाग और कौन होगा। ऐसे कृष्ण को कोई ना भजे तो उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। तो जयदेव जी ने इस तरह से बातें बोली। तो जयदेव जी की वाणी सुनकर राजा चकित होकर उनके चरणों में लौट गए और बहुत प्रभावित होकर के वो राजा भी क्या हो गए, भक्त बन गए। हरि बोल। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती, ये भी एक देवी है, कोई सामान्य स्त्री थोड़ी है। पद्मावती छाया की भांति सब प्रकार से स्वामी का जो है अनुवर्तन करने वाली थी। भगवान के प्रति उसका प्रेम असीम था और पातिव्रत धर्म का महत्व भली भांति जानती थी। जयदेव जी राजा के पूज्य थे, इससे रानी जो राजा की रानी थी और राजा की माता, सब राजमहल की महिलाएं इनके घर में इनका सत्संग करती थी। रानी बहुत साधु थी, धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी, परंतु उसके मन में कुछ अभिमान था, इससे किसी किसी समय कुछ दुस्साहस कर बैठती थी। होता ना, राजघराने की स्त्रियां हैं तो उनमें कुछ ना कुछ घमंड तो होता ही है, तो पद्मावती के साथ में कभी उल्टा व्यवहार कर बैठती थी। एक दिन पद्मावती के साथ इसी प्रकार का उसने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया। किसने? राजा की रानी ने। सत्संग हो रहा था, बातों बातों में पद्मावती ने सती धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा, जो स्त्री स्वामी के मर जाने पर उसके शव के साथ जलकर सती होती है वो तो नीचे श्रेणी की सती है। उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। पद्मावती ने ये कहा, उच्च श्रेणी की जो सती है वो पति के साथ चिता में नहीं जलती, वो क्या करती है, अपने पति के मरण का समाचार सुन के ही प्राण त्याग देती है। उच्च श्रेणी की सती वो होती है। रानी को यह बात नहीं जची, उसने समझा पद्मावती अपना गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही है। मन में ईर्ष्या जाग उठी और रानी ने परीक्षा करने का निश्चय किया। तो एक समय राजा के साथ जयदेव जी कहीं बाहर गए थे तो रानी को अवसर मिला और दुखी चेहरा बना करके पद्मावती के पास आई और कपट से रोते हुए बोली कि पंडित जी को वन में शेर खा गया। उसने जो है कहानी बनाती है, ये देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए, पंडित जी को वन में शेर खा गया। उसका इतना कहना था कि पद्मावती श्री कृष्ण कहकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी ने चौंक कर देखा तो पद्मावती अचेतन मालूम हुई। परीक्षा करने में पता चला कि प्राण निकल गए, पद्मावती के प्राण निकल गए, रानी के होश उड़ गए। अपने दुस्साहसपूर्ण कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वो सोचने, अब महाराज को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरे ऊपर कितना बड़ा कलंक लग गया। अब जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेव जी की पत्नी की मृत्यु का कारण मुझको समझेंगे तब उन्हें कितना कष्ट होगा, मेरे कारण मेरे पतिदेव कितना कष्ट होगा, जयदेव जी को भी कितना संताप होगा। हाय विधाता। इतने में जयदेव जी आ गए, राजा के पास भी मृत्यु का संवाद पहुंचा, वे भी वहां आ गए। राजा के दुख का पार नहीं रहा, बहुत दुखी हुए राजा। रानी तो जीते जी मरे के समान हो गई, कैसा लग रहा है कलंक, उसको एक बहुत बड़ा कलंक लग गया। जयदेव जी ने रानी के सखियों से सारा हाल जानकर कहा, रानी माँ से कह दो घबराए नहीं। जयदेव जी कहते हैं, रानी माता से कह दो घबराए नहीं, मेरी मृत्यु के संवाद से पद्मावती के प्राण निकल गए हैं, तो मेरे जीवित यहां आ जाने पर उन प्राणों को भी वापस आना पड़ेगा। जयदेव जी कहते हैं, जयदेव जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, कीर्तन प्रारंभ हो गया। क्या? कीर्तन प्रारंभ हो गया। जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे, धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। हरि बोल। देखते देखते उठ बैठी और हरि ध्वनि करने लगी। रानी आनंद की अधिकता से ही रो पड़ी। रानी को कितना आनंद हुआ होगा, उसका कितना बड़ा कलंक दूर हो गया। हरि बोल। उसने कलंक के भंजन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस ना करने की प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगी। सब और आनंद छा गया। जयदेव जी की भक्ति और पद्मावती के पातिव्रत का यश चारों ओर फैल गया। कुछ समय गौड़ में रहने के बाद पद्मावती और श्री राधा माधव जी के विग्रहों को लेकर राजा की अनुमति से जयदेव जी अपने गांव को लौट आए। कहाँ पर आ गए? किंदुबिल। राधा माधव को लेकर के आ गए, पद्मावती लेकर आ गए। यहाँ इनका जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब गया। इसी प्रेम रस में डूबकर इन्होंने मधुर गीत गोविंद की रचना की। वो गीत गोविंद के 10 अवतार तो लिख लिए थे और एक श्लोक पहले लिख लिया था, है ना। अब गीत गोविंद की रचना शुरू की। एक दिन जयदेव जी गीत गोविंद को एक कविता, गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वो पूरी ही नहीं हो पा रही थी, है ना। तो गीत गोविंद की कविता लिख रहे थे जिसमें राधा रानी मान कर रही हैं और कृष्ण उनका मान दूर करने के लिए उनको मना रहे हैं, और जब कृष्ण मना रहे हैं तो उसमें 8 जो है पदों की रचना करते हैं जयदेव जी। कृष्ण जो है राधा रानी को क्या क्या बोलते हैं, उनको प्रसन्न करने क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो उसमें से जो है एक पद है, स्मर गरल खंडनम मम हृदय रंजनम जनित रतिरंग परभागम भल मसृण वाणी करवाणी चरण द्वयम सरस दल लसद लक्तक रागम स्मर गरल खंडनम मम सिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अब भगवान कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं कि जो कामदेव के विष को दूर करने वाले तुम्हारे चरण कमल हैं, कामदेव के विष को दूर करने वाले तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो मेरे सिर में आप रखो। भगवान कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं, है ना। तो देहि पद पल्लव मुदारम, अब उनके हृदय में तो स्फुरित हो रहे हैं शब्द, कि भगवान की जैसी लीला हो रही है उस तरह से शब्द वो लिख रहे हैं, लेकिन अब सिद्धांत के अनुसार जो है वो गलत हो रहा है कि भगवान कृष्ण राधा रानी चरण मांगे, तो ये तो सिद्धांत के अनुसार उचित नहीं है। अब वो जो है धर्म संकट पड़ गए, दुविधा में पड़ गए, है ना। तो क्या हो रहा कि वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब लिखना वही है लेकिन लिखें कैसे, है ना, पूरी नहीं हो पा रही। तो पद्मावती ने कहा कि स्वामी स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान करके आइए तो ठीक, फिर आप जो है लिख लेना, अभी स्नान कर लो, है ना। तो पत्नी भी जो है मतलब इस कार्य में बहुत सहयोग, पत्नी का बहुत सहयोग है। उसने कहा स्नान करके आप आ जाओ, तब तक आप जो है आ जाएगा कुछ निश्चित रूप से कि क्या लिखना है, निश्चित हो जाएगा, तो आप लिख लेना, अभी आप जो है स्नान करो। तो जयदेव ने कहा पद्मा जाता हूं क्या करूं, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठ रहा है, तुम सुनो। स्थल गमल कंजनम मम हृदय रंजनम जनित रतिरंग पर भागम भड़ मसृण वाणी करवाणी चरण द्वयम सरस लसद लक्तक रागम स्मर गरल खंडनम मम सिरसि मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। पद्मावती ने कहा इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिए। अच्छा यही सही, ग्रंथ को कलम दावत को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूं। तो ग्रंथ भी दे दिया पद्मा को और कलम दावत भी ले दी। उस समय पेन थोड़ी होते थे, बॉल पेन नहीं होते थे, है ना, दावत और कलम दे दिया। अच्छा मैं स्नान करके आता हूं। और जयदेव जी स्नान कर इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। भगवान जयदेव के रूप में आए, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच में कैसे लौट आए? तो श्री कृष्ण बोले जयदेव के रूप में, रास्ते में ही चरण याद आ गया इसलिए लौट आया। सोचा कि पूरा कर दूं। तो थोड़े से शब्द हैं केवल, क्या देहि पद पल्लव मुदारम, बस इतना ही लिखना है। इतना लिखने के लिए आ गया मैं। तो भगवान बोले, रास्ते से लौट के आ गया, फिर जाऊंगा स्नान करने, पहले लिख लेता हूं। तो भगवान जो है जयदेव के रूप में आए और पद्मावती से ग्रंथ ले लिया, कलम दबात ले लिया और लिख दिया अपने हैंड राइटिंग में, देहि पद पल्लव मुदारम, और कविता की पूर्ति कर दी। तब पद्मावती से पानी मांग करके स्नान भी कर लिया। बोले, अब नहीं जाऊंगा गंगा जी, अब यहीं पर स्नान कर ले, तो पानी दे दो मुझे। तो पानी मांग करके स्नान कर लिया, फिर पूजा भी, पूजा पाठ भी कर लिया, अपनी ही पूजा कर ली। और किसकी पूजा करें, अपनी ही पूजा करी, अपनी पूजा कर ली। और फिर भगवान को जो भोग अर्पित किया था, उनको ही भोग अर्पित हुआ था पद्मावती से, के हाथ से भोजन पा करके पलंग में लेट गए, लेट गए, खा पी करके लेट गए पलंग में। पद्मावती पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। उसे क्या पता, पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी और स्नान करके जयदेव जी अब लौट करके आए। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पहली बार मैं देख रहा हूं, बिल्कुल उल्टा दृश्य हो रहा है। ये क्या हो रहा है? गंगा जी 10 मील दूर थी, इनके घर से गंगा जी 10 मील दूर थी, है ना? तो सोचो आने जाने में कितना टाइम लगा। उतनी देर में भगवान ने जो है स्नान भी कर लिया, पद्मा ने भोजन वगैरह सब बना दिया, भोग लगा दिया, भगवान को भोजन करा दिया और भगवान जो है लेटे हैं। पद्मा को जो है देखा, और पति को जो है देख करके पद्मा सहम गई। वो सहम गई कि मैं क्या देख रही हूं। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, ये क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव के भोग लगाकर मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? मैंने तुम्हारा आचरण ऐसा कभी नहीं देखा है। पद्मावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे, कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे हैं, इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूं? आपने तो यहीं स्नान किया और मेरा बनाया भोजन आपने ग्रहण किया, अभी मैं देख रही हूं कि आप स्नान करके आए। जयदेव जी ने जाकर देखा तो पलंग पर कोई नहीं लेटा है। समझ गए कि भगवान भक्तवत्सल है, भगवान भक्तवत्सल हैं, और अपने हाथ से वो पुष्टिकरण कर दिया कि मुझे जो लिखना है, जो मैं नहीं लिखना चाहता हूं, भगवान ने अपने हाथ से लिख दिया है। पद्मावती से कहते हैं, पद्मा लाओ जरा दिखाओ क्या लिखा है, कैसे कविता की पूर्ति हुई है, जरा देखूं तो दिखाओ। पद्मावती ग्रंथ ले आई, शायद वो पढ़ी लिखी भी नहीं रही होगी, पद्मा जो है पढ़ी लिखी भी नहीं रही होगी, है ना। पद्मावती ग्रंथ ले आई, जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, मैं संकोच के कारण लिख नहीं पा रहा था। फिर दोनों हाथ जोड़कर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांगनाधव, हे गोकुल रत्न करुणा सिंधु, गोपाल प्राण प्रिय, किस अपराध से इस सेवक को त्याग कर आपने केवल पद्मा को दर्शन दिया है? मेरा सौभाग्य नहीं है आपका दर्शन करने का, इसको अपने इतना सौभाग्य दिया ना, तो मिलेगा ही पति की सेवा करने की। जो भक्ति की सेवा करे वो भगवान को ज्यादा प्रिय होता है, भक्ति से ज्यादा प्रिय होता है। मत भक्ता नाम चे भक्तास्ते में भक्त तमामता, है ना। तो भगवान कहते हैं, ये मैं भक्त जना पार्थ न ते में भक्त जनामता, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं होते। मत भक्ता नाम चे भक्तास्ते में भक्त तमामता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो तो पद्मा तो कृष्ण की भक्ति नहीं थी, वो तो अपने पति की भक्ति थी, है ना। तो भगवान जो है उसके ऊपर कितनी कृपा करते हैं, उसके हाथ का बनाया हुआ खाया मांगा, पानी मांगा, स्नान किया। आज किस अपराध से इस सेवक को त्याग कर केवल पद्मा को दर्शन दिए। इतना कहकर जयदेव जी ने पद्मावती की पत्तल छीन ली। अब वो कैसे देगी, वो देगी अपना जूठा कैसे देगी, है ना, चल मुझे दे, छीन लिया। अकेले अकेले खा रही है तू। छीन लिया और प्रसाद खाया। पद्मावती ने कितनी बार रोक कर कहा, नाथ आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं। लेकिन लोभी हैं जयदेव, भगवान कृष्ण के प्रसाद के लोभी। जयदेव ने एक नहीं सुना, तेरी बात नहीं सुनना मुझे, अब तुम कुछ मत बोल, तू चुप रहे। छीन करके खाया। इस घटना के बाद इन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया और फिर उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते थे। गाते गाते जहां कहीं जाते थे तो भक्त जो है, भक्त का ये जो गीत गोविंद सुनने के लिए भगवान छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते थे। तो कई संकेत ऐसे मिलते थे कि भगवान जयदेव के साथ है ना। ये भी कहा जाता है कि गीत गोविंद में एक बसंत ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु का वर्णन है। तो जब जयदेव जो है बसंत ऋतु का वर्णन जब गाते थे गीत गोविंद से, तो बसंत ऋतु आ जाती थी। आप सोचिए बसंत ऋतु कैसी होती है, जिसमें ना गर्मी होती है ना जो है जाड़ा होता है और सब फूल ही फूल खिले। तो कोई भी ऋतु हो, किसी भी समय वो गाएंगे तो बसंत ऋतु आ जाएंगे, सब फूल खिल जाएंगे। तो ऐसे कभी ऐसा कभी कोई हुआ आज तक कि जिसकी रचना में जो है रूप गोस्वामी का है इसी प्रकार से प्रभाव, कि वो जो है जब कृष्ण के विरह का वर्णन करते थे, कृष्ण के विरह का वर्णन करते थे, वो लिख रहे हैं तो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए लिख रहे हैं तो कृष्ण के विरह का वर्णन लिख रहे हैं और पेड़ जो है पढ़ रहा है रूप गोस्वामी का वो वर्णन। वो पेड़ पढ़ता था और उसके क्या होते थे, वो सूख जाता था पेड़, सब पत्ते झड़ के गिर जाते थे। और जब रूप गोस्वामी कृष्ण के माधुर्य का वर्णन लिख रहे हैं तो पेड़ में अपने आप सब पत्ते आ जाते थे। वो पेड़ जो है आराम चुपचाप पढ़ के पढ़ता रहता था कि क्या लिख रहे हैं। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जैसे लेखक और कवि जो है कहीं नहीं मिल सकते हैं ना। अंतकाल में जयदेव जी अपनी पति परायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर और निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले आए। तो वृंदावन में ही आ गए ना राधा माधव, है ना। तो वृंदावन आ गए और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख करके आनंद लूटते रहे। भगवान वृंदावन में अपनी लीला दिखा दे। तो कहा जाता है कि ब्रजमंडल में भगवान की लीलाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ प्रेम तत्पर लोगों को ही वो दर्शन होते हैं भगवान की लीलाओं के, है ना। तो वृंदावन में जयदेव गोस्वामी को भगवान की लीलाओं के दर्शन होते थे, आनंद लूटते रहे। और वृंदावन में ही देह त्याग करके गोलोक धाम गए। तो उन्होंने वृंदावन में ही जो है शरीर छोड़ा है। तो आज का जो दिन है इनके तिरुभाव दिवस है। आविर्भाव का पता ही नहीं है, इन्होंने अपने आविर्भाव की तिथि ना किसी को बताई ना किसी को पता। तो आविर्भाव जो है अज्ञात है। तो हमारे वैष्णव कल्याण में इनका केवल तिरुभाव आता है, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, है ना। इनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर किंदु बिल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्राय लाख से अधिक नर नारी एकत्रित होते हैं, है ना। तो जयदेव गोस्वामी के विषय में तो और भी बहुत सी बातें हैं, है ना, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाएं हैं और बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं, है ना। लेकिन अब हम यहीं पर ही विश्राम करेंगे और आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे। कुछ है आप लोगों की ओर से, कुछ चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, इसमें एक विचार तो ये है कि इनका कुछ भी कर्म ना हो, हो सकता है इनका कुछ भी कर्म ना हो, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि पांडवों का भी जो है कोई कर्म नहीं था जो उनको इतना कष्ट मिला, अन्याय मिला, तो पांडवों का कोई कर्म नहीं था, लेकिन जो हुआ तो भगवान की इच्छा से हुआ। और भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि ऐसे संकट में भी आपकी बुद्धि कितनी स्थिर है, ये एक परीक्षा है ना। और भक्त के साथ इस तरह का जो व्यवहार हुआ ये दिखा करके हमें वो शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ होता है तो हम तुरंत विद्रोह कर बैठते हैं कि हमने आपका इतना नाम लिया, इतने माला जप की और ये सब हमारे साथ व्यवहार हुआ, अब छोड़ो माला, अब बंद करो नाम का जप बंद करो और ये राधिका रमण मंदिर में जाना भी बंद कर दो, अब अपनी राधिका रमण मंदिर में अब नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब हमारे साथ जो है अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, छोड़ दो, अब यहाँ भक्तों की क्लास में नहीं बैठना है, माला जप नहीं करना है, है? और चार नियमों का पालन भी नहीं करना है, अब जो है सब छोड़ दो, ऐसा ऐसा सा हमारे साथ व्यवहार हुआ है, है ना। लेकिन विधि यही है समझने की कि और ज्यादा होना था, एक तरीका ये भी है सोचने का, हमें और ज्यादा हमारे कर्म के अनुसार हमें और ज्यादा दंड मिलना था, हम राधा राधिका रमण मंदिर में गए तो हमें कम मिला है, तो ये तरीका है। तो इस तरीके से भगवान की कृपा और मिलती है। आप भगवान की कृपा देखें, भगवान की कृपा क्या है कि कम हो गया और ज्यादा, हमारे कर्म तो ज्यादा थे, ज्यादा धन मिलना था, कम हो गया, भगवान ने बड़ी रक्षा कर ली, भगवान की बड़ी कृपा है। तो अगर भगवान की कृपा देखते हो तो कृपा और भगवान करते हैं, है ना। या अगर भगवान की आप जो है दोष देखते हो तो आपको भगवान के और दोष दिखाई देंगे, तो आप जो देखना चाहो तो भगवान जो है वही असीमित रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो कोई अंत नहीं है भगवान, अगर आप दोष देखना चाहते हो तो कोई अंत नहीं मिलेगा भगवान के, और कृपा देखना चाहते हो तो कोई अंत नहीं मिलेगा भगवान की। तो क्या देखना है, क्या देखना चाहते हो, कृपा देखना है तो कृपा देखो, तो दुखों में भी जो है आप कृपा देखिए, तो ये शिक्षा मिलती है हमको कि कितने मतलब ये स्थिर बुद्धि हैं, है ना। और कोई चर्चा, कोई प्रश्न, मैं प्रश्न करूं, ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, इनका जो जन्म स्थान है उसका, उस गांव का नाम क्या है, किंदुबिल्व, ठीक है, और जिला वीरभूमि जिला, और प्रांत बंगाल, अच्छा, तो इनके इनके पिता का नाम क्या था, भोजदेव, और माता का नाम, अरे वो बड़ा अच्छा जो है, आप लोगों का श्रवण बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, अब ये बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, घर में कोई था नहीं, अकेला एक छोटा सा बालक है और भजन में लगा रहता है, तो गांव का एक जो ब्राह्मण था तो उसने इसका गलत फायदा उठाना चाहा, उसका नाम क्या था, निरंजन था, है ना। तो उसने क्या सोचा, कौन बताएगा, निरंजन ने क्या सोचा, जोर से बोलो, माइक नहीं है,
ये सोचा कि धोखेबाजी करके इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं हथिया लूं, तो उससे उसे जो दस्तावेज थे उस पर साइन करा लिया, लेकिन तभी उसके घर से उसकी बेटी भागते हुए आई, उसको बोला कि जो है पिताजी हमारे घर में आग लग गई। तो जब वो गए तो जयदेव गोस्वामी को बड़ा खराब लगा, तो खुद ही उस घर में प्रविष्ट हो गए, और उनके प्रविष्ट होते ही जो है वो अग्नि बुझ गई।
हरि बोल। तो हो सकता है कुछ पैसा जो है उसने मतलब दिया हो, उनके पिता को कुछ पैसा दिया हो, लेकिन थोड़ा सा पैसा, है ना, तो उसके बदले में पूरा घर जो है हथियाना चाहता था, है ना। और उससे जो है फिर वो इतना प्रभावित हुआ कि एक घटना में ही भक्त बन गया, एक घटना भक्त बन गया, है ना। और इनके साथ में एक और ब्राह्मण थे, जब ये अपने गांव से निकले जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो एक ब्राह्मण थे, कौन था, क्या नाम था, पराशर, पराशर नाम के एक ब्राह्मण थे, है ना। तो रास्ते में जब ये गर्मी के कारण, पानी ना मिलने के कारण और बहुत गर्मी के कारण मूर्छित हो गए, उस समय भगवान किस रूप में और क्या किया? इनको 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 माइक दीजिए, माइक दो माइक।
भगवान जो है गोपाल रूप में आए और इनको दूध दिया और पानी दिया।
हाँ, और पंखे से नहीं,
अपने कपड़े से,
वस्त्र से हवा करी, वस्त्र से हवा करी, है ना, इस तरह से भगवान ने अपने को छिपाया, लेकिन इस तरह से जो है अपने भक्ति की सेवा करी, है ना। और उसके बाद फिर एक दृश्य उनको दिखाई दिया, वो कैसा दृश्य था जो गीत गोविंद का सबसे पहला श्लोक लिखा, कैसा दृश्य था, कौन बताएगा? आप बताओ।
मतलब नीले पर्वत दिखे उनको चारों ओर, और जो है कारिंदी नदी भी उनको पास में बहते हुए दिखी थी, और भगवान का दर्शन हुआ था, तो फिर उन्होंने कंपोज किया था पहला।
कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं, है ना। तो ये दृश्य देख करके वो श्लोक उन्होंने गीत गोविंद का सबसे पहला श्लोक लिखा। और फिर रास्ते में ही, जगन्नाथपुरी के रास्ते में ही, उनको और कौन कौन से दृश्य दिखाई दिए जिससे उन्होंने और आगे की कविताएं लिखी, कौन बताएगा? इनको दीजिए।
भगवान के 10 अवतारों का दर्शन हुए,
एक एक करके
10 अवतार स्तोत्र लगा।
10 अवतार, पहला
मत्स्य अवतार,
दूसरा इधर कोई कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा राम अवतार, नहीं परशुराम, अच्छा भृगुपति है ना, छठा परशुराम, और सातवां राम अवतार, आठवां बलराम, नवां बुद्ध, दसवां कल्कि। तो कृष्ण तो आए नहीं, कृष्ण 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 क्यों नहीं आए? हाँ, कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण के ही 10 अवतार हैं। इसलिए प्रत्येक अवतार की जो वंदना लिखी है, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धृता कच्छप रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे। इस प्रकार से उन्होंने केशव का जो है गुणगान किया है, प्रत्येक अवतार का वर्णन करते हुए कृष्ण का ही गुणगान किया है। तो कृष्ण को माना है कि वे जो है परिपूर्णतम भगवान है। श्री जयदेव गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। अंतिम प्रश्न, श्री बैठिए, अंतिम प्रश्न बोलिए, माइक दो माइक।
मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरी कथा ली। मैं पूछना चाहता हूँ जी, क्या ऐसा वर्णन है कि जयदेव गोस्वामी का जो नित्य रूप है, जिससे हम देखते हैं रूप गोस्वामी का जो है रूप मंजरी है सनातन गोस्वामी,
हाँ भगवान की लीला में क्या है? ये भी हो सकता है कि ये भगवान मतलब वो नित्य सिद्ध ना हो, साधन सिद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भगवान की लीला में ये क्या हुए? भगवान की लीला में तो गए, इनको क्या स्वरूप मिला, तो ये वर्णन नहीं आता, है ना। स्वरूप गोस्वामी तो नित्य सिद्ध हैं, है ना, तो कोई नित्य सिद्ध होते हैं, कोई साधन सिद्ध होते हैं, तो साधन सिद्ध के बाद जो है मतलब भगवान की लीला में जाएंगे तो उनको क्या स्वरूप प्राप्त होगा, तो वो भी कभी कभी पता चल जाता है किसी को, ना, लेकिन हमेशा पता नहीं चलता। अब प्रभुपाद ने अपने बारे में नहीं बताया, ठीक है ना। तो कोई भक्त बताते हैं प्रभुपाद के शिष्य की, वो उद्धव जी के अवतार हैं, प्रभुपाद उद्धव जी के अवतार, लेकिन प्रभुपाद ने अपने स्वयं नहीं बताया है, किसी को अगर बताया अलग से बताया है तो वो बात जो है मतलब वो मतलब प्रकट नहीं हुई है, प्रकट नहीं हुई है, है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं जानते। लेकिन प्रभुपाद भी आए तो भगवान के धाम से आए, जो भी हो, ठीक है ना। धन्यवाद, हरि बोल, धन्यवाद। अब आप लोग जो प्रश्न आपस में कर लीजिए, फिर मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं, हरि बोल।